एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है, सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी किताब पर बात करने वाले हैं। आजकल के माहौल में तो शायद ये और भी ज्यादा जरूरी हो गई है, जहां हम बच्चों पर बढ़ते दबाव तनाव की बातें अक्सर सुनते हैं।
बिल्कुल, किताब का नाम है द ऑप्टिमिस्टिक चाइल्ड, हिंदी में कहें तो आशावादी बालक, और इसके लेखक हैं डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन। ये किताब ना सीधे उस सवाल से टकराती है जो शायद हम में से कई सोचते होंगे, क्या हम अपने बच्चों को मुश्किलों से लड़ने के लिए ज्यादा तैयार कर सकते हैं, उन्हें ज्यादा आशावादी बना सकते हैं?
हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। आजकल हम देखते हैं बच्चे छोटी छोटी बातों पर, मतलब कोई असफलता हुई तो बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। स्कूल का प्रेशर है, फिर दोस्तों के बीच अपनी जगह बनाने की चिंता, लगता है जैसे निराशा थोड़ी हावी सी हो रही है।
सही कह रहे हैं।
आशावाद मतलब मुश्किल में भी ये सोचना कि हाँ रास्ता निकल आएगा, क्या ये सिखाया जा सकता है?
और यही यही इस किताब का एकदम सेंट्रल आइडिया है। ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। ये किताब बच्चों को दिमागी तौर पर, मतलब साइकोलॉजिकली मजबूत बनाने का एक तरीका, एक वैज्ञानिक तरीका समझाने की कोशिश करती है।
तो फिर पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात हो जाए। डॉक्टर मार्टिन सेलिगमैन, इन्हें पॉजिटिव साइकोलॉजी का जनक कहा जाता है ना?
हाँ बिल्कुल, सकारात्मक मनोविज्ञान के पितामह, पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, मतलब APA, उसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो मनोविज्ञान की दुनिया में काफी काफी बड़ा नाम है इनका।
अच्छा,
पर मजे की बात यह है कि इनका जो शुरू का काम था वो पॉजिटिव साइकोलॉजी से एकदम उल्टा था।
उल्टा मतलब?
हाँ, उनका जो सबसे पहला और मशहूर काम है वो है लर्न्ड हेल्पलेसनेस पर, मतलब सीखी हुई लाचारी। ये 60-70 के दशक की बात है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से दिखाया कि कैसे जब बार बार नाकामी मिलती है या ऐसी सिचुएशन आती है जहां लगता है कि हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो जानवर और इंसान भी वो हार मान लेना सीख लेते हैं, कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, भले ही बाद में बचने का रास्ता साफ दिख रहा हो।
अरे, ये तो सुनने में ही बड़ा निराशाजनक सा लग रहा है। सीखी हुई लाचारी से आशावादी बालक तक, ये कैसे हुआ? ये बदलाव कैसे आया?
यही तो कहानी का दिलचस्प मोड़ है। इसी लाचारी पर काम करते करते उन्हें ये ख्याल आया कि भाई, अगर लाचारी सीखी जा सकती है तो क्या इसका ठीक उल्टा, मतलब आशावाद, क्या वो भी सीखा जा सकता है?
वाह।
और ये सिर्फ कोई किताबी ख्याल नहीं था उनका, वो खुद एक पिता भी है और उन्होंने इन प्रिंसिपल्स को अपने बच्चों की परवरिश में भी इस्तेमाल किया। तो ये किताब उनके दशकों के रिसर्च और उनके व्यक्तिगत अनुभव दोनों का नतीजा है।
तो फिर ये किताब असल में है क्या? मतलब क्या ये सिर्फ पेरेंट्स के लिए कोई गाइड बुक है?
सिर्फ पेरेंटिंग गाइड कहना तो इसे थोड़ा कम आंकना होगा। हाँ, ये माता पिता, टीचर्स और जो भी बच्चों के साथ काम करते हैं उन सबके लिए बहुत प्रैक्टिकल है। पर इसकी बुनियाद जो है वो गहरी साइकोलॉजिकल समझ पर टिकी है, और इसका जो मेन आइडिया है ना, वो एक तरह से क्रांतिकारी है।
वो क्या?
वो ये कि आशावाद कोई किस्मत की बात नहीं है या कोई पैदाइशी गुण नहीं है कि किसी में है किसी में नहीं, बल्कि ये एक स्किल है, एक कौशल है जिसे सीखा जा सकता है।
कौशल मतलब जैसे हम कोई हुनर सीखते हैं, साइकिल चलाना या?
हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। सेलिगमैन ये बताते हैं कि असली फर्क इस बात से पड़ता है कि बच्चे अपने साथ जो होता है, खासकर जब कुछ बुरा होता है, तो वो उसे खुद से समझाते कैसे हैं, अपने मन में उसकी व्याख्या कैसे करते हैं।
अच्छा, व्याख्या कैसे करते हैं?
हाँ, इसी को वो कहते हैं व्याख्यात्मक शैली या एक्सप्लेनेटरी स्टाइल, और यही शैली तय करती है कि बच्चा मुश्किल आने पर उससे उभरेगा या फिर हार मान लेगा। उसके मूड पर, उसकी पढ़ाई पर, आगे चलकर उसकी सफलता पर, सब पर इसका असर पड़ता है।
और लेखक इस बात से भी चिंतित हैं शायद कि आजकल बच्चों में डिप्रेशन बढ़ रहा है
बहुत ज्यादा। उन्होंने 60 के दशक से आंकड़े देखे हैं कि कैसे डिप्रेशन और निराशा बच्चों में बढ़ती जा रही है। वो इसे एक पूरी पीढ़ी का संकट कहते हैं। उनका कहना है कि भाई, डिप्रेशन होने के बाद हम इलाज ढूंढते फिरे, उससे तो कहीं अच्छा है कि हम बच्चों को पहले से ही आशावादी सोच का, एक तरह से कहें तो, टीका लगा दें।
टीका मतलब साइकोलॉजिकल इम्यूनाइजेशन, मानसिक टीकाकरण।
बिल्कुल, वही शब्द इस्तेमाल करते हैं वो। तो ये किताब हमें सिखाती है कि निराशावादी सोच कैसी होती है, उसे पहचाने कैसे, और सबसे जरूरी, उसे बदलने के लिए क्या ठोस तरीके अपना सकते हैं।
बच्चे घटनाओं को समझाते कैसे हैं, ये जरूरी है।
हाँ, तो सेलिगमैन कहते हैं कि जब बच्चों के साथ कुछ बुरा होता है तो वो उसे तीन पैमानों पर देखते हैं। समझने में आसानी के लिए उन्होंने इन्हें तीन पी कहा है।
तीन पी?
जी।
कौन कौन से?
पहला पी है परमानेंस, मतलब स्थायित्व। बच्चा क्या सोचता है कि ये जो बुरा हुआ है इसका असर हमेशा रहेगा या ये बस अभी की बात है।
अच्छा, मतलब मैं कभी अच्छा नहीं कर सकता, बनाम इस बार अच्छा नहीं हुआ।
बिल्कुल, निराशावादी बच्चा सोचेगा हमेशा, आशावादी सोचेगा कभी कभी या इस बार। दूसरा पी है परवेसिवनेस, यानी व्यापकता। क्या वो ये मानता है कि ये एक नाकामी उसकी जिंदगी के हर हिस्से को खराब कर देगी?
जैसे?
जैसे मैं गणित में फेल हो गया, मतलब मैं किसी लायक ही नहीं हूँ। ये निराशावादी सोच हुई। आशावादी बच्चा सोचेगा, ठीक है मैं गणित में अच्छा नहीं हूँ, पर मैं खेलता तो अच्छा हूँ या ड्राइंग अच्छी करता हूँ। मतलब एक जगह की नाकामी को पूरी जिंदगी पर हावी नहीं होने देना।
और तीसरा पी?
तीसरा है पर्सनलाइजेशन, यानी व्यक्तिकरण। जब कुछ बुरा होता है तो क्या बच्चा हमेशा सिर्फ खुद को ही दोषी मानता है? इसे कहते हैं इंटरनल पर्सनलाइजेशन, या वो बाहरी वजहों को भी देख पाता है जिसे एक्सटर्नल कहते हैं।
मतलब सब मेरी ही गलती है, बनाम शायद सवाल मुश्किल थे या उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी।
एग्जैक्टली। तो अगर कोई बच्चा लगातार ये सोचता है कि बुरी चीजें हमेशा रहेंगी, परमानेंट, सब कुछ बिगाड़ देंगी, पवेसिव, और ये सब उसी की गलती है, पर्सनल इंटरनल, तो ये एक निराशावादी व्याख्यात्मक शैली है।
समझ गया। और सेलिंगमैन मानते हैं कि आजकल ये निराशावादी शैली बच्चों में ज्यादा दिख रही है।
हाँ, उनका मानना है कि समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, जैसे परिवार का बदलता रूप, कॉम्पिटिशन का बढ़ना, बच्चों को खुद से कुछ करके सीखने और उसमें महारत हासिल करने के मौके शायद कम हो रहे हैं, इन सब वजहों से ये निराशावादी सोच पनप रही है, और इसीलिए वो रोकथाम पर, मतलब प्रिवेंशन पर इतना जोर देते हैं।
तो फिर रोकथाम कैसे करें? यही पर वो ABCD मॉडल आता है शायद।
हाँ बिल्कुल, ये इस किताब का सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है, उसका दिल है एक तरह से। ये असल में कॉग्निटिव थेरेपी का एक आसान सा रूप है जो बच्चों को ये सिखाता है कि उनकी जो भावनाएं हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो सीधे घटनाओं से पैदा नहीं होती।
अच्छा, तो फिर कैसे?
वो पैदा होती हैं उन घटनाओं के बारे में हमारे विचारों से, हमारे बिलीफ से। इसको ABC से समझते हैं पहले। ए, एडवर्सिटी। कोई मुश्किल आई, कोई प्रतिकूल घटना हुई, मान लीजिए दोस्त ने खेलने के लिए नहीं बुलाया। बी, बिलीव्स। उस घटना ए के बारे में बच्चे के मन में फौरन क्या विचार आया, जैसे मुझसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, अब ये एक निराशावादी विश्वास है। सी, कॉन्सिक्वेंसेस। उस विश्वास बी का नतीजा क्या हुआ, भावनाएं क्या आई, जैसे अकेलापन, उदासी, और उसने किया क्या, व्यवहार, जैसे चुपचाप कमरे में बैठ गया।
ठीक है, ए हुआ घटना, बी हुआ उस पर हमारा विचार, और सी हुआ उस विचार का नतीजा, हमारी भावनाएं और हमारा व्यवहार। यहाँ तक तो समस्या समझ आ गई, पर अभी से बदलें कैसे?
यहीं पर डी और ई का रोल आता है, ये बदलाव लाते हैं। डी, डिस्प्यूटेशन। ये सबसे जरूरी कदम है। यहाँ बच्चे को सिखाना है कि वो अपने उस निराशावादी विश्वास बी पर सवाल उठाए, उससे बहस करे, उसे चुनौती दे।
बहस करे अपने ही ख्याल से?
हाँ, और इसके लिए सेलिगमैन चार तरीके बताते हैं, चार हथियार समझ लीजिए। पहला, सबूत, एविडेंस। बच्चे से पूछे, क्या इस बात का कोई सबूत है कि कोई तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता? जरा सोचो, कल तुम किसके साथ खेले थे, परसों कौन तुम्हारे घर आया था। दूसरा, विकल्प, ऑल्टरनेटिव्स। क्या कोई और वजह हो सकती है कि दोस्त ने आज नहीं बुलाया? क्या पता उसकी मम्मी ने मना किया हो या वो खुद कहीं जा रहा हो, मतलब क्या और कोई व्याख्या संभव है। तीसरा, निहितार्थ, इम्प्लीकेशंस। चलो एक पल के लिए मान भी लें कि उसने जानबूझकर नहीं बुलाया, तो क्या इससे क्या हो जाएगा? क्या इसका मतलब है कि तुम कभी दोस्त नहीं बना पाओगे? इसे वो डीकैटास्ट्रोफाइजिंग कहते हैं, मतलब राई का पहाड़ बनाने से रोकना। चौथा, उपयोगिता, यूजफुलनेस। अच्छा, ये जो तुम सोच रहे हो, मुझसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, क्या ये सोचना अभी तुम्हारे लिए किसी काम का है? क्या इससे तुम्हें अच्छा लग रहा है, या कुछ और सोचना ज्यादा फायदेमंद होगा, जैसे चलो मैं किसी और को फोन करके देखता हूँ।
अरे वाह, ये तो कमाल का तरीका है। मतलब बच्चे अपने नेगेटिव विचारों को ही कटघरे में खड़ा करना सीख सकते हैं।
बिल्कुल। और फिर आता है ई, एनर्जाइजेशन, जब बच्चा सफलतापूर्वक अपने नेगेटिव विचारों का खंडन या डिस्प्यूटेशन कर लेता है तो उसे सिर्फ ऐसा नहीं कि बुरा लगना बंद हो जाता,
तो
उसे एक नई ऊर्जा मिलती है, एक गर्व महसूस होता है कि हाँ, मैंने अपने बुरे ख्यालों को हराया। उसे लगता है कि वो अपनी भावनाओं को संभाल सकता है, ये उसे ताकत देता है।
ये सुनने में बहुत पावरफुल लग रहा है, और आपने कहा था कि इस पर रिसर्च भी हुई है?
हाँ हाँ, बिल्कुल। सेलिगमैन और उनकी टीम ने स्कूलों में बच्चों के साथ बड़े पैमाने पर स्टडीज की हैं, जैसे पेन प्रिवेंशन प्रोग्राम। उन्होंने बच्चों को ये ABCD तकनीकें सिखाई और नतीजे हैरान करने वाले थे।
क्या नतीजे थे?
जिन बच्चों ने ये सीखा था उनमें आगे चलकर डिप्रेशन होने की संभावना उन बच्चों के मुकाबले लगभग आधी रह गई जिन्होंने ये नहीं सीखा था। इसीलिए इस किताब के आखिरी हिस्से इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि स्कूलों में और घरों में इन तकनीकों को कैसे लागू किया जाए।
तो इस पूरी बातचीत से, इस किताब से, अगर हमें कुछ खास बात, कुछ मुख्य संदेश निकालने हो तो वो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात जो निकल कर आती है वो ये है, आशावाद सीखा जा सकता है। ये कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, इसे हम सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं।
हाँ, ये बहुत उम्मीद देने वाली बात है। दूसरी बात, हमारी सोच कितनी ताकतवर है। मतलब हमारे साथ क्या हुआ उससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि हमने उसे अपने मन में समझा कैसे, वो व्याख्यात्मक शैली वाली बात।
बिल्कुल। बुरी घटनाओं को टेम्पररी, अस्थायी मानना, स्पेसिफिक किसी एक क्षेत्र तक सीमित मानना, और जहां तक हो सके एक्सटर्नल बाहरी कारण मानना, ये हमें लचीला बनाता है। तीसरा, रोकथाम इलाज से कहीं बेहतर है। बच्चों को ये हुनर अगर हम किशोरावस्था से पहले सिखा दें तो वो आगे आने वाली बहुत सी मानसिक परेशानियों से बच सकते हैं।
चौथा, जो आपने कहा, बच्चों में बढ़ता डिप्रेशन एक वाकई गंभीर मुद्दा है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, इसके सामाजिक कारण भी हैं जिन्हें समझने की जरूरत है।
पांचवा, ये किताब कोई आंख बंद करके पॉजिटिव सोचने को नहीं कहती। मतलब ये अंधा आशावाद नहीं है, ये रियलिस्टिक ऑप्टिमिज्म की बात करती है, यथार्थवादी आशावाद। मतलब मुश्किलों को देखो, समझो, पर उम्मीद का दामन मत छोड़ो और समाधान ढूंढो।
और हाँ, एक और बात, हम बड़ों की भूमिका, माता पिता, शिक्षक, हमें ना सिर्फ ये सिखाना है बल्कि खुद भी इसका उदाहरण बनना पड़ेगा। बच्चे हमें देखकर ही सीखते हैं।
100% सही बात। और आखिरी चीज ये कि ये सारी बातें हवा में नहीं है, ये सब ठोस वैज्ञानिक रिसर्च पर आधारित है। ये सिर्फ अच्छा महसूस कराने वाली बातें नहीं बल्कि जांची परखी तकनीकें हैं।
किताब में यकीनन कुछ ऐसी लाइनें या विचार होंगे जो दिमाग में रह जाते हैं, कुछ यादगार बातें।
हाँ, हैं तो कई। एक तो बहुत सीधी और असरदार बात है, आशावादी बच्चा डिप्रेशन से ज्यादा सुरक्षित रहता है, स्कूल और काम में ज्यादा सफल होता है, और शारीरिक रूप से भी ज्यादा स्वस्थ रहता है। ये आशावाद को सिर्फ एक फीलिंग से ऊपर उठाकर एक फायदेमंद स्किल बना देता है।
बिल्कुल। और निराशावाद के बारे में भी कुछ कहा होगा?
हाँ, उसके खतरों के बारे में भी साफ लिखा है। निराशावाद मन की एक गहरी आदत है जिसके बहुत दूर तक जाने वाले और विनाशकारी नतीजे हो सकते हैं। उदासी, हार मान लेना, कम उपलब्धि, और यहाँ तक कि सेहत का खराब होना भी, ये एक तरह की चेतावनी है।
मुझे वो बात बहुत दमदार लगी कि बच्चे की व्याख्यात्मक शैली वह असफलताओं को खुद से कैसे समझाता है, उसके साथ असल में क्या होता है उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देती है।
सही कहा। और ये वाली बात भी कितनी उम्मीद देती है, आशावाद और उम्मीद सीखी जा सकती हैं, और हमारे बच्चों को ये दोनों सिखाने के वैज्ञानिक रूप से मान्य तरीके मौजूद हैं। ये माता पिता और शिक्षकों को जैसे एक राह दिखाती है, उन्हें ताकत देती है, और अंत में वो ABCD तकनीक, उसे एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण कहा गया है।
तो बातें असली सवाल पर, हम रोजमर्रा की जिंदगी में इसे इस्तेमाल कैसे करें? कोई उदाहरण लेकर सोचें। मान लीजिए बच्चे का रिजल्ट आया और मैथ्स में नंबर कम है। वो उदास होकर कहता है, मैं तो मैथ्स में एकदम बुद्धू हूं, मुझसे कभी नहीं होगा।
यही पर ABCD काम आ सकता है। आप बच्चे के साथ बैठें। ए, एडवर्सिटी, तो हो गया कम नंबर आना। बी, बिलीफ हुआ, मैं बुद्धू हूं, मुझसे कभी नहीं होगा। अब आता है डी, डिस्प्यूटेशन। आप उससे सवाल पूछ सकते हैं।
कैसे सवाल?
जैसे, क्या ये सच है कि तुम बुद्धू हो? क्या इसका कोई सबूत है? पिछले क्लास में तो तुम्हारे अच्छे नंबर थे ना मैथ्स में, क्या कोई और वजह हो सकती है इस बार? शायद पेपर मुश्किल था या तुमने तैयारी के लिए कम समय दिया। विकल्प, अच्छा चलो मान लिया इस बार नंबर कम है, तो इसका मतलब क्या है? क्या तुम हमेशा फेल होगे? क्या तुम और कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते? निहितार्थ, डीकैटास्ट्रोफाइजिंग। और बेटा, ये सोचना कि मैं बुद्धू हूँ, क्या ये अभी तुम्हारी मदद कर रहा है? क्या इससे तुम्हें अच्छा लग रहा है? उपयोगिता।
अच्छा, मतलब उसे उसकी नेगेटिव सोच पर ही सवाल उठाना सिखाना है बातचीत के जरिए। और अगर कोई सामाजिक बात हो, जैसे किसी दोस्त ने बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाया, बच्चा दुखी है कि लगता है मुझे कोई पसंद ही नहीं करता।
बिल्कुल वही तरीका यहाँ भी काम करेगा। उसके विश्वास, मुझे कोई पसंद नहीं करता, कुछ चुनौती दें, सबूत ढूंढने में मदद करें। पर तुम्हारी तो प्रिया से इतनी अच्छी दोस्ती है, तुम कल ही तो उसके साथ खेल रहे थे। अब वैकल्पिक कारण सोचने को कहें। हो सकता है उसकी मम्मी ने सिर्फ थोड़े ही बच्चों को बुलाने को कहा हो। उसे ये समझाने में मदद करें कि एक घटना का मतलब पूरी दुनिया खराब हो जाना नहीं होता।
और एक बहुत जरूरी बात ये भी है कि हम खुद कैसे बात करते हैं,
बहुत
है ना? अगर हम ही अपनी छोटी छोटी गलतियों पर कहें, ओह मुझसे तो हमेशा यही गड़बड़ होती है, तो बच्चा भी तो वही सीखेगा।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। हम अपनी असफलताओं पर, अपनी गलतियों पर कैसे रिएक्ट करते हैं, बच्चे वो बहुत ध्यान से देखते हैं। और एक और चीज, तारीफ करने का तरीका। सिर्फ रिजल्ट की तारीफ मत करें। तुम फर्स्ट आए, तुम बहुत स्मार्ट हो। कोशिश की, मेहनत की, तरीके की तारीफ करें। वाह, तुमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कितना सोचा, तुमने हार नहीं मानी, तुम्हारी ये कोशिश बहुत अच्छी थी। इससे बच्चा सफलता को अपनी कोशिश और सीखने की काबिलियत से जोड़ता है, ना कि किसी अंदरूनी स्मार्टनेस से जो या तो है या नहीं है।
तो कुल मिला के इस किताब से जो सबसे बड़ी सीख मुझे लग रही है वो ये है कि बच्चों की जो ये मानसिक मजबूती है, उनका लचीलापन जिसे रिजिलियंस कहते हैं, वो कोई किस्मत की देन नहीं है। ये एक हुनर है जिसे हम सिखा सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। मुश्किलें तो आएंगी ही जिंदगी में, पर बच्चे उनसे कैसे निपटते हैं, कैसे उनकी व्याख्या करते हैं, ये ज्यादा मायने रखता है।
बिल्कुल। और हमारा काम शायद बच्चों को हर मुश्किल से बचाकर रखना नहीं है, बल्कि उन्हें वो मानसिक औजार, वो मेंटल टूल्स देना है जिनसे वो इन मुश्किलों का सामना कर सकें, उनसे सीख सकें और मजबूत बनकर उभर सकें। आशावाद का मतलब ये नहीं कि आप सच्चाई से मुंह मोड़ लें। इसका मतलब है सच्चाई को देखना, उसे स्वीकार करना, लेकिन फिर भी उम्मीद और समाधान की नज़र बनाए रखना।
ये वाकई मेंटल हेल्थ को देखने का एक नया नज़रिया है। मतलब प्रॉब्लम होने पर ठीक करने से ज़्यादा प्रॉब्लम को होने से रोकने पर फोकस।
हाँ, डॉक्टर सेलिगमैन का काम इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि वो वैज्ञानिक रिसर्च को बहुत ही प्रैक्टिकल तरीकों से जोड़ता है। ये हमें गहरी समझ भी देता है और साथ ही बच्चों में उम्मीद और लचीलापन जगाने के ठोस कारगर तरीके भी बताता है। मेरे लिए तो ये पढ़ना बहुत ही आंखें खोलने वाला अनुभव रहा।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।